रैदास वाणी और आधुनिक दलित साहित्य। गुरु रैदास की वाणी की रचना मध्यकाल में 15वीं सदी के दौरान हुई। आधुनिक दलित साहित्य का आरंभ माना जाता है 20वीं सदी के मध्य। इन 500 वर्षों के भीतर दलित जीवन पर आधारित विपुल साहित्य रचा गया, लेकिन इस साहित्य को दलित साहित्य की परिभाषा प्राप्त नहीं हुई। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले के प्रभाव में दलित जागरण लहर और दलित मुक्ति आंदोलन ने ही दलित साहित्य को भी सुदृढ़ आधार प्रदान किया, क्योंकि दलित जागरण लहर सबसे पहले महाराष्ट्र में उठी। इसलिए दलित साहित्य की रचना भी मराठी व महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे पहले हुई। अन्ना भाऊ साठे, शंकर राव खरात, नारायण सुर्वे आदि के प्रयत्नों से दलित साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन ने जन्म दिया, जो बाद में दलित पैंथर आदि के प्रयत्नों से जुझारू रूप ग्रहण कर गया। दलित जागरण लहर का समाज में स्थापित सत्ता ने विरोध किया। ज्योतिबा फूले तथा सावित्री बाई फूले को दलितों में शिक्षा का प्रसार करने से रोकने के अनेक प्रयत्न हुए। दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने औरंगाबाद के पास चावदार झील पर जन आंदोलन का आरंभ किया। उस समय का उनका भाषण दलित जागरण लहर का मील का पत्थर है। इस आंदोलन के बाद दलितों में व्यापक जनसंगठन बने और उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए दीर्घकालीन संघर्ष की शुरुआत कर दी। इन्हीं दलित जनसंघर्षों से मराठी दलित साहित्य का आरंभ हुआ, जो आज एक सशक्त धारा बनकर पूरे भारत तक फैल गया है। रैदास वाणी की प्रमुख विशेषताओं में उनका आत्मनिवेदन शामिल है। आदि ग्रंथ में ही संकलित उनके अनेक पद उनके आत्मनिवेदन या आत्म प्रकटीकरण के उदाहरण हैं, जैसे नागर जन मेरी जाति बिखी आतु चमारों, मेरी जाति कुट बाढ़ला ढोर ढोवता नित ही बनारसी आसा पासा, या इसी भाव को व्यक्त करती यह पंक्ति, मेरी जाति कमीनी पांती कमीनी ओछा जन्म हमारा, या फिर कही रैदास खलास चमारा। अपने कई पदों में गुरु रैदास ने स्वयं को चमार जाति से संबंधित बताया है। हालांकि उन्होंने एक दो स्थानों पर अपनी जाति को कमीनी या ऊंची कहा है, लेकिन वास्तव में कमीन ओछा या नीच शब्द उस समय निम्न कही जाति जातियों के लिए समाज के वर्चस्वकारी वर्ग द्वारा प्रचलित किए गए थे तथा ये शब्द जन व्यवहार में रूढ़ हो गए थे। गुरु रैदास या कबीर आदि संतों ने अपनी जाति का वर्णन तथ्यपरक रूप में किया है। संत या भक्त बनने पर या समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होने पर अपनी जाति छिपाने या स्वयं को उच्च जाति कहलाने का भ्रम उन्होंने नहीं पाला। मध्यकाल में रैदास आदि संतों में आत्मनिवेदन की जो भावना थी, आधुनिक काल के दलित साहित्य में वही भावना प्रकाश्य अर्थात आत्मकथा रूप में गद्य विधा में प्रकट हुई। मध्यकाल के संत कवियों की रचना में काव्य विधा में आत्मकथा के कुछ कुछ अंश प्रकट हुए हैं। आधुनिक युग में आत्मकथा या जीवन चरित ने एक संपूर्ण विधा का रूप ग्रहण किया है, जो गद्य में रची जाती है। आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियां भी मध्यकाल से कहीं अधिक जटिल है। मध्यकाल में गुरु रैदास, संत कबीर आदि को धार्मिक क्षेत्र में सम्माननीय स्थान मिलने पर तत्कालीन समाज ने भी कुछ हद तक स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उनका कुछ सम्मान समाज में होने लगा था, लेकिन आधुनिक काल में दलित समाज के लोगों को समाज में आधुनिक काल में दलित समाज के लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए कहीं अधिक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के उन गिने चुने प्रकांड विद्वानों में थे जो विदेश से PhD की उपाधि प्राप्त कर लौटे थे। किसी उच्च जाति व्यक्ति के लिए यह समाज में अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त होने की घटना होती, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को समाज में सम्मान तभी मिला जब उन्होंने दलित जागरण लहर आरंभ की व लाखों करोड़ों दलितों के वे नेता बनकर उभरे। एक सामाजिक शक्ति के जब वे प्रतीक बने तभी उन्हें भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान मिला। हालांकि इतनी बड़ी जनशक्ति का प्रतिनिधित्व करने पर भी उस जनशक्ति को न ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और न ही स्वतंत्र भारत के सत्तासीन नेताओं द्वारा वह अधिकार व सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे और हैं। लेकिन रैदास के आत्मनिवेदन और डॉक्टर अम्बेडकर के जन आंदोलन ने आधुनिक दलित लेखकों में आत्मविश्वास व अपनी दलित पृष्ठभूमि के प्रति आत्मसजगता की भावना भरी। इसी से दलित समाज की सर्वाधिक प्रतिष्ठित विधा बनी आत्मकथा। मराठी में शंकर राव खरात से लेकर अब तक 35 के करीब आत्मकथाएं रची गई हैं, जिनमें से कई तो भारतीय साहित्य की क्लासिक रचनाएं बन गई हैं। कईयों को साहित्य अकादमी जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दया पवार कृत बलुंत शरण कुमार लिम्बाले कृत अक्रमाशी, लक्ष्मण गायकवाड़ कृत उचालिया इत्यादि आत्मकथाएँ इस समय भारतीय साहित्य में गौरव ग्रंथ मानी जाती हैं। इन सब आत्मकथाओं में इन लेखकों ने अपने अपने उत्पीड़ित दलित जाति के जीवन के उत्पीड़न और संघर्षों को अपनी जीवन कथा के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। गुरु रैदास का प्रभाव सर्वाधिक हिंदी दलित साहित्य पर भी पड़ा तथा कुछ पंजाब में। हिंदी में भगवान दास ने आत्मकथा लिखी मैं भंगी हूँ। यह आत्मकथा का विधागत रूप अपनाकर भंगी जीवन की वास्तविकताओं को बयान करने वाली मार्मिक रचना बनी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हाल के वर्षों में भंगी जाति की ही पीड़ाओं को व्यक्त किया अपनी आत्मकथा जूठन में। यह हिंदी में एक महत्वपूर्ण आत्मकथा के रूप में चर्चित हुई है। इसी प्रकार मोहनदास नभिसराय ने चमार जाति की व्यथाओं को व्यक्त किया अपनी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे में। इसे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा भी कहा गया है। जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास छप्पर भी बहुत हद तक आत्मकथात्मक ही है। प्रसिद्ध समाजसेवी राजनेता व उच्च पदों पर आसीन रहे माता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन प्रकाशित हो गई है। हिंदी में अमृतलाल नागर का भंगी जाति के जीवन संघर्षों में रचा उपन्यास नाचो बहुत गोपाल भी आत्मकथात्मक स्वरूप में लिखा गया है। पंजाब के दोआब क्षेत्र के चमारों के जनजीवन व संघर्षों पर आधारित जगदीश चंद्र का उपन्यास त्रयी के दूसरे भाग का शीर्षक ही रैदास वाणी से लिया गया है नरक कुंड में वास। आधुनिक हिंदी दलित साहित्य में दलित अस्मिता के प्रतीकों बुद्ध, एकलव्य, झलकारी बाई, गुरु रैदास, शंभूक, शबरी, बिरसा, डॉक्टर अम्बेडकर को विषय बनाकर अनेक रचनाएं हुई हैं। आनंद प्रकाश रचित संत रैदास कविता का अंश देखें। कर्मकांड और आडम्बर के कभी नहीं जो गए थे पास, याद सदा रखेगा जिनको प्यारे भारत का इतिहास। दुखियों के दुख तारनहारा मानवता के सच्चे दास, शत शत नमन करूं मैं तुमको संत कवि हे रविदास। डॉक्टर अंगले लाल ने अपनी रचना आदिवंश कथा में रैदास कथा कही है। इसके पद अनुवाद की एक झलक देखें संत शिरोमणि रैदास की कथा। मैं आज उन्हें दिखला दूंगा ब्राह्मण ढोंगी पाखंडी हैं, तबके असली व अधिकारी जो आदिवंश नरसंगी हैं। जिसको वे शूद्र अनार्य कहें उनकी संस्कृति ही प्यारी है, आर्यों के आने से पहले जो 5 सदी से भारी है। डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व को आधार बनाकर तो सैकड़ों कविताएं हिंदी में लिखी गई। उन सब में भारतीय अस्मिता के गौरव का उद्घोषण हुआ था, लेकिन रैदास वाणी में आक्रोश मुख्य स्वर है। इसका स्वर उसने गोरखवाणी व कबीरवाणी से भी लिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का संकलन बस बहुत हो चुका। डॉक्टर एन सिंह संपादित दर्द के दस्तावेज व अनेक अन्य संकलनों में सैकड़ों कविताएं दलित आक्रोश को अभिव्यक्त करती हैं। डॉक्टर सोहन पाल सोमनाक्षर अपनी कविता दलित समाज के युवकों से में वाल्मीकि, कबीर, दादू, पीपा, नामदेव, ज्ञानेश्वर से तो जोड़ते हैं, लेकिन जाने कैसे रैदास को वे छोड़ देते हैं। लोकगीतों में भी गुरु रैदास के प्रति सम्मान व्यक्त हुआ है। एक पूर्वी लोकगीत में रैदास का चित्र खींचा गया है। रैदास संत तो जूता गाठ है, फिर भी मिली बड़ाई, जिसको गुरु बनाया अपना रानी मीराबाई। आधुनिक दलित साहित्य आत्मकथा और कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी रचा गया है। दलित साहित्य संबंधी आलोचना ग्रंथों की रचना भी शुरू हो गई है। दलित साहित्य के अपने अलग सौंदर्य शास्त्र की जरूरत भी रेखांकित हो रही है। जाहिर है कि मराठी के बाद अब हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में भी दलित साहित्य अपना समुचित स्थान बना रहा है। एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हिंदी में दलित साहित्य को मान्यता प्राप्त हो रही है। सो दलित साहित्य अब अपनी परंपरा स्पष्ट कर आज के दलित साहित्य की समस्याओं पर विचार कर सकता है। परंपरा में दलित साहित्य के बीज सिद्धनाथ वाणी, गोरखवाणी से पड़ जाते हैं, जो कबीर रैदास वाणी के साथ कोंपल बनकर आधुनिक काल में पल्लवित होकर पेड़ बनते हैं। इस पूरी परंपरा में कबीर रैदास आधुनिक दलित साहित्य के श्रेष्ठ अग्रदूत की भूमिका का निर्वाह करते हैं।